ओम शांति। मधुवन बेहद गर्व में इस भट्टी कराने के लिए आज विशेष हमारे पास राजयोगी ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई पधारे हैं। सब बहुत ही तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। ऐसे तो आप सब जानते ही हो, फिर भी थोड़ा संक्षिप्त में परिचय दे देंगे। करीब 40 साल से बाबा के यज्ञ में समर्पित होकर सेवाएं दे रहे हैं और लौकिक में भी MSc गोल्ड मेडलिस्ट है। ऐसे तो देखो तो लौकिक में ऐसी पढ़ाई पढ़ने वाले कोई ऊंची पोस्ट पर जरूर होते हैं। बाबा ने यहाँ भी इन्हों को बहुत ऊंची सेवा दी है। ऐसे तो सभी प्रकार की सेवाएं करते, लेकिन देश विदेश में टोली जो बाबा की अति प्रिय है, सबको अच्छी लगती है। सभी आशा रखते हैं कि मधुवन की टोली हमारे पास आए, तो टोली बनाने की सेवा में जिम्मेवार है और अपनी ऐसी बुद्धि अथवा दिव्य बुद्धि कहो, विकसित बुद्धि कहो, लौकिक नॉलेज के कारण और बाबा के पुरुषार्थ के अनुभव के कारण आप देश विदेश के भाई बहनों को भट्टी के क्लासेस, वैसे भी जब बाप दादा से मिलने के लिए आते हैं तो भी क्लासेस आदि कराते ही रहते हैं। काफी देशों में आपने भी अपनी सेवाएं दी है और खास यूथ विंग जो हमारी है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हो और मधुवन की यज्ञ सेवा में दिल से एक एग्जाम्पल है। सबको आश्चर्य होता है जब परिचय लेते हैं किचन में जाकर, या तुम भाई इतने पढ़ाई पढ़ने के बाद भी टोली बनाते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो एक एग्जाम्पल भी बने हुए हो। तो आज हम आपका अनुभव युक्त क्लास सुनेंगे, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति। आप योगी तो आत्मा है, योग के गहरे अनुभव भी है और अच्छी योग की क्लास भी कराते हैं। आप सबको आज जो स्वमान दिया है लाइट हाउस माइट हाउस, उस स्वमान के अनुकूल आज का आपका क्लास होगा। सब बड़ी ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रता से सुनेंगे और न सिर्फ सुनना है लेकिन उस स्थिति में चले जाना है। तो मैं अभी अतुम भाई को विशेष नम्र निवेदन करती हूँ कि आपकी क्लास सबको सुनाए और सबको लाइट हाउस माइट हाउस बना दे। हम शांति।
ओम शांति। वर्तमान समय बाबा का विशेष इशारा है कि फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहो। इस सीजन में भी बाबा ने कहा था कि कुछ भी हो फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। क्योंकि बाबा हमें फरिश्ता स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा कराने का गोल्डन चांस देना चाहते हैं। आप विदेशों में जाएंगे तो जहां तहां एंजल्स के, फरिश्तों के यादगार के रूप में स्टैच्यू है। भारत में जहां तहां परियों की यादगार दिखाते हैं। ये बात स्पष्ट करती है कि हम बाबा के बच्चों ने फरिश्ता स्थिति के द्वारा मानवता की बहुत सेवा की है, उसके यादगार अभी तक भी पाई जा रही है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसे पावर हाउस, उससे कहते हैं जहां इलेक्ट्रिक पावर बहुत अच्छी तरह से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। दूसरी बात है उस पावर हाउस से सबके लिए पावर, इलेक्ट्रिक पावर सोर्स के रूप में उपलब्ध होती है, सप्लाई होती है। तो ऐसे लाइट के हाउस और माइट के हाउस बनना बहुत जरूरी है। लाइट हाउस की स्थिति ज्ञान के सब्जेक्ट से संबंधित है, माइट हाउस की स्थिति योग के सब्जेक्ट से संबंधित है। जितनी दोनों सब्जेक्ट में हमारी प्रोग्रेस होती जाती है, उतनी हमारी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति विकसित होती ही रहती है। लाइट हाउस की स्थिति बनाने के लिए दो बातें हैं। सबसे पहली बात है सदा स्वयं को लाइट रखना, हल्का रखना। दूसरी बात है सदा इस देह रूपी हाउस में आत्मा की जो लाइट है वो सदा जलती रहे और सदा बढ़ती रहे। फुल नॉलेजफुल स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है सदा स्वयं को लाइट अनुभव करना। अगर किसी परिस्थिति में हम बोझिल हो जाते हैं, थोड़ा सा बोझ अनुभव करते हैं, तो ये स्पष्ट करता है कि बाबा ने उस परिस्थिति के लिए जो मुरली में ज्ञान की पॉइंट समझाई है वो मेरे बुद्धि में क्लियर नहीं है, उसकी लाइट मुझे नहीं मिली है। ज्ञान सूर्य से हमें ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश मिलता है। तो मुरली के हर एक महावाक्य में बहुत गुह्य राज और साज समाया हुआ है। जितने मुरली के गृह राज हम समझते हैं उतना हम सदा लाइट रहते हैं। सदा लाइट रखने के लिए तीन बातों को जीवन में अपनाना है। पहली बात, हर रोज जो हम मुरली सुनते हैं, मुरली सुनने के बाद मुरली का मनन चिंतन करते रहना बहुत जरूरी है। जितना ज्ञान का मनन चिंतन हम बढ़ाते जाते हैं, उतना स्वयं को लाइट हम अनुभव करते जाते हैं। विष्णु ये हमारी यादगार है, बाबा ब्रह्मा बाबा की और हमारी यादगार है। विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए हैं, सागर में आंधी तूफान आ रहा है, जोर से बारिश हो रही है, कितने सीतम आ रहे हैं, फिर भी विष्णु निश्चिंत हैं, टांग पर टांग लेटे हुए हैं, रखते हुए बेफिक्र बादशाह की तरह। गीता ज्ञान के मनन के चिंतन में मगन है। तो ये केवल ब्रह्मा बाबा की ही यादगार नहीं है, लेकिन बाबा के साथ हम बच्चों की भी यादगार है। मनन चिंतन से दो प्राप्तियां हमें होती हैं, एक तो सदा लाइट रहते हैं और दूसरा विष्णु अर्थात आत्मा में अंश मात्र भी विष विकार का नहीं रहता है, अंश मात्र भी नहीं, विष नो। हमें विष्णु के वंश में जाना है, हमें वैष्णव वंशावली बनना है, इसलिए विकारों के अंशों से हमें मुक्त होना है। दूसरी बात, सदा लाइट रखने के लिए नथिंग न्यू का पाठ हमारे जीवन में बहुत नेचुरल हो। बाबा ने एक बार कहा था, इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे उनके जीवन में नथिंग न्यू का पाठ बहुत नेचुरल धारण होगा। आप यहां आए हैं भट्ठी करने के लिए, तृप्ति दीदी आपकी गाइड बनी हैं, विशेष ध्यान रखने के लिए निमित्त बनी हैं, तो आप यहां पहली बार नहीं आए हैं, अनगिनत बार आए थे इसलिए अभी आए हैं और अनगिनत बार आते ही रहेंगे। नथिंग न्यू, जब नथिंग न्यू है तो फिर टेंशन अनुभव करना या भारी अनुभव करना बात खत्म हो जाता है। जो भी ड्रामा की सीन पास हो रही है वो अनेक बार पास हो चुकी है, इसलिए नथिंग न्यू, सदा हल्के रहे। कोई नई बात होती है तो थोड़ा सा हम बोझिल होते हैं, तीसरी बात, सदा हल्के रखने के लिए स्वयं को हमारी जो लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का बोझ ब्रह्मा बाबा के कंधे पर रख दें और स्वयं को एकदम छोटा बच्चा या बच्ची अनुभव करें और हल्के रहें। बाबा बैठे हैं, बाबा जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदारी का बोझ बाबा को दे देते हैं तो स्वयं एकदम हल्के अनुभव करने लगते हैं। तो ये स्वयं को लाइट रखने की युक्तियां हैं, लेकिन दूसरी बात है, इस देह रूपी मकान में, देह रूपी हाउस में सदा आत्मा का दीपक जलता रहे। ब्रह्मा बाबा मधुबन में जहां पर भी विचरण करते थे, चलते थे, तो हर कोई बाबा को फरिश्ता ही अनुभव होता था। हर बच्चा बाबा को फरिश्ता ही देखता था। एक बार प्रकाशमणि दादी जी अनुभव सुना रही थी, बाबा मुझे अपने हाथ में हाथ लेकर मधुबन की सैर करा रहे थे, तो बाबा का हाथ जैसे कि लाइट का या रुई का मुझे अनुभव हो रहा था। स्थूल हाथ नहीं है, लेकिन एकदम लाइट का हाथ है या रुई का हाथ है। फरिश्ता ही बाबा अनुभव होता था, क्योंकि बाबा के देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा का लाइट जलता था। भगवान को भूतेश्वर कहते हैं, क्यों कहते हैं? जहां होता है अंधेरा, वहां होता है भूतों का क्या? डेरा। तो ये जो मकान है, इसमें लाइट बहुत डल हो चुकी थी, इसलिए इस मकान में भूतों का डेरा हो चुका था। पांच भूतों का राज चल रहा था। बाबा ने लाइट जला दी, भूत भाग गए। जिसके मकान में सदा रोशनी रहती है, वही बाबा के बच्चे बाबा का नाम रोशन करते हैं। माया उस दीपक को बुझाने का प्रयास करती है, हमें उस दीपक को सदा जलाकर रखने का अभ्यास करना है। अगर मेरे मकान में रोशनी नहीं है तो फिर क्या समझे? रो प्लस शनि, रुलाने वाला शनि मेरे पीछे लगा है। तो केवल आत्मा का दीपक जलता रहे इतनी ही बात पर्याप्त नहीं है, लेकिन उस दीपक की रोशनी दिन प्रतिदिन और प्रखर होती रहे और प्रखर होती रहे, और हमारा जो लाइट का ऑरा है वो बहुत विशाल बनता जाए। दिव्य और भव्य ऑरा आभा मंडल अनुभव होता रहे। आत्मा के मुख्य सात गुण हैं, सुख शांति, प्रेम पवित्रता, ज्ञान आनंद शक्ति। ये सात गुण आत्मा के हैं मुख्य। तो सप्त ऋषि, सात गुण वाला ऋषि आत्मा इस गुफा में बैठा हुआ है। तो जैसा हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, जिस गुण पर ध्यान रखते हैं, उस प्रकार के वाइब्रेशन प्रकंपन आत्मा से प्रस्फुटित होते रहते हैं। आत्मा का आभा मंडल बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे ये दिव्य प्रकाश, फरिश्ता अर्थात दो उसकी निशानियां हैं मुख्य। पहली निशानी है फरिश्ता अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज धारी, स्थूल शरीरधारी नहीं, लेकिन दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर उसका होता है। उसके हरेक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें, रश्मियां प्रस्फुटित होती ही रहती हैं। और दूसरा फरिश्ता अर्थात जिसके सभी रिश्ते भगवान के साथ हैं, किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ नहीं है, सभी रिश्ते भगवान के साथ हैं। वो फरिश्ता कहलाता है। इस ज्ञान मार्ग में अगर आपको अच्छी तरह से आगे बढ़ना है, बहुत सुंदर अनुभूतियों को बढ़ाना है, तो एक बात आपके पास क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो बात बहुत महत्वपूर्ण है इस ब्राह्मण जीवन में, कौन सी बात? मन और बुद्धि में क्या अंतर है, मन और बुद्धि को कैसे स्पष्ट देखें और अनुभव करें। आत्मा, जब हम स्वयं को समझते हैं, आत्मा तो ये शक्तियों का पुंज है, लेकिन आत्मा समझने के बाद कौन सी शक्ति मन है, कौन सी शक्ति बुद्धि है, ये क्लियर समझ हमारे पास होना जरूरी है। अभी आपको प्रश्न पूछता हूं, दो पूछो, बोलो पूछो। क्या आपने बाबा का कमरा मधुबन में देखा है? बोलो। हाँ, देखा है, अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न, कैसा है वो कमरा? थोड़ा सा कुछ भी बातें बताऊं। शांत है, और बाबा का ट्रांसलाइट बहुत सुंदर है, बाजू में क्या है, बाबा का बेड है, बाद में क्या है, बहुत सुंदर मैट्रेस है, वहां बैठने से कैसा लगता है? बहुत शांति और शक्ति की अनुभूति होती है। तो पहला प्रश्न पूछा, बाबा का रूम देखा है, तो बाबा का कमरा आपके सामने आ गया, आप उसको देखने लगे, वो आत्मा की देखने की शक्ति बुद्धि रूपी नेत्र है। आत्मा की जो आंख है ना, वो है बुद्धि, आत्मा का नेत्र, तीसरा नेत्र। बाबा ने हमें बर्थडे की गिफ्ट दी है, पहले कौरव संप्रदाय के थे हम अंधे, अभी पांडव संप्रदाय के बन गए सुजाग, नेत्रदान बाबा ने किया, ठोकरे खा रहे थे इधर उधर। दूसरा प्रश्न पूछा, कैसा कमरा है? बहुत प्यारा है, बहुत न्यारा है, बहुत सुंदर ट्रांसलाइट है, बाजू में बेड है, बाद में मैट्रेस है, बहुत फीलिंग वहां की अच्छी है। वो आप मुझे सोच सोच कर एक एक बात बता रहे थे, वो आपका मन था। तो आत्मा की देखने की शक्ति बुद्धि है, सोचने की शक्ति मन है, एकांत में बैठकर अच्छी तरह से अनुभव करेंगे, उतना आप इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। ये सीक्रेट है। अभी क्या करना है, बुद्धि रूपी नेत्र को आत्मा पर फोकस करना है, बिंदु पर फोकस करना है, मैं एक चमकता हुआ दिव्य बिंदु सितारा हूं, देखो यहां स्पष्ट देखो, बिंदु को देखो, मैं बिंदु हूं, किस प्रकार की बिंदु हूं, शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा देखते हुए सोचते हैं तो शांति की किरणें, शांति के प्रकंपन, शांति की वेव्स ऑटोमेटिक आत्मा से निकलने लगती हैं और हमें बहुत शांति की अनुभूति होती जाती है। तो ऐसे बार बार सातों गुणों का अभ्यास एकांत में बैठकर करते रहते हैं तो हमारा जो आभा मंडल है, आत्मा का जो औरा है, वो बहुत अच्छी तरह से विकसित होता जाता है। कहते जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति। जैसी हमारी स्थिति होती है, जैसा हमारा ओरा होता है, वैसी उपस्थिति अर्थात जहां जाते हैं वहां वाइब्रेशन फैलने लगते हैं। तो हमें अपने आभा मंडल को बहुत अच्छी तरह से दिव्य और भव्य बनाते जाना है, खुद का दर्शन करना है, फिर बाद में खुदा का दर्शन करना अर्थात योग का कनेक्शन जुड़ जाना। खुद का दर्शन नहीं अच्छी तरह से कर सकते हैं तो खुदा का दर्शन भी, बाबा का दर्शन भी हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते बाबा। लेकिन आत्मा तो हमें समझना है। लेकिन जैसे दीदी ने कहा, आज हमारा सामान क्या है? लाइट हाउस और माइट हाउस। तो आत्मा जो है, राजा सिंहासन मिला है सामान का, मैं लाइट हाउस और माइट हाउस हूं, ये सिंहासन है। आत्मा जब इस सिंहासन पर बैठती है, स्थित हो जाती है, तो फिर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करती है। अपनी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है, स्थूल कर्मेंद्रिया है, उस पर नियंत्रण और अनुशासन करने लगती है। स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति होती है। जो स्वयं के राजा बनते हैं, वो दूसरों के राजा सतयुग में स्वतः ही बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, हमेशा सोमान के सिंहासन पर बैठे रहो। राजा कभी भी सिंहासन नहीं छोड़ता है। जब पराजित होता है ना, तो सिंहासन छोड़ता है, नहीं तो उसी नशे में, उसी मस्ती में, उसी रुहाब में रहता है। दादी जी ने कहा था जाते जाते, अगर दादी से प्यार है, दादी जैसा बनना चाहते हैं, तो केवल दो ही शब्द धारण करो, सम्मान में सदा रहना और सबको सदा सम्मान देना, बस ये है आगे बढ़ने का राज। सदा सम्मान में रहो और सबको सम्मान देते रहो, बस दादी की ये मुख्य विशेषता थी। इसलिए आत्मा के लाइट को, आत्मा के प्रकाश को बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठकर उसमें स्थित होना है। इसमें दो बातें हैं, ये अभ्यास मेरा बढ़ रहा है या नहीं वो चेक करना है, तो इसकी दो बातें हैं। इसको अगर आप शुरुआत करते हैं तो 100% में से 10% आत्मा पर फोकस है, इसका मतलब 90% देह का भान है। उसको बढ़ाते जाना है, एकांत में बैठकर 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 100 आत्मा का भान अर्थात 0 देह का भान। 100% गहरी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति क्या है? पूर्णतया हम आत्मा के भान में स्थित हो जाएं और देह के भान को मिटा दे। कर्मातीत अर्थात कर्मेंद्रियों के भान से अतीत दूर न्यारे। कर्मेंद्रिय जो हमारे हैं, शरीर हमारा जो है, उसके भान से भी दूर न्यारे। तो जैसा जैसा ये अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा तो स्वयं लाइट हाउस की स्थिति अनुभव करते जाएंगे और हमारे द्वारा औरों को भी वो लाइट, ज्ञान का प्रकाश, दिव्यता का प्रकाश मिलता जाएगा, अनुभव होता जाएगा। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए हमें, जब हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं, तो एक अभ्यास बार बार करते रहें कि मैं एक अलौकिक अवतरित फरिश्ता कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। ऐसा गुप्त ही गुप्त अभ्यास करते रहें तो ये लाइट हाउस की स्थिति हमारी और बढ़ती जाती है। किचन में सेवा कर रहे हैं, घर में सेवा कर रहे हैं, ऑफिस में सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक लाइट हाउस और माइट हाउस फरिश्ता कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहा हूं। ये अंदर ही अंदर अभ्यास बढ़ाते रहें, ठीक है। भी दूसरी बात, माइट हाउस की स्थिति अनुभव करना। हम बाबा के पास क्यों आए हैं, बोलो? हाँ, क्यों आए हैं बाबा के पास? यहाँ आप क्यों आए हैं? शक्तियां भरने के लिए है, हाँ जी, रिफ्रेश होने के लिए है। देखो, विश्व के ग्लोब पर मधुबन ही ऐसा एक स्थान है जो बहुत चार्ज रहता है। जहां बैठे हैं, स्थान ऐसा पावरफुल है, ऐसा पावरफुल है, यहां योग की साधना करने के लिए जितने भी सपोर्टिंग फोर्सेस चाहिए उपलब्ध है। थोड़ा सा प्रयास करते ही बहुत सुंदर गहन अनुभूतियां आप इस श्रेष्ठ स्थान पर कर सकते हैं। ये इस स्थान का वरदान है। तो हम बाबा के पास क्यों आए हैं? आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। अभी ये बैटरी चार्ज कैसे होती है और डिस्चार्ज कैसे होती है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। मोटे रूप से तो कह दिया हमने कि बैटरी चार्ज करने के लिए आए हैं, योग से बैटरी चार्ज होती है, लेकिन होती कैसी है, क्या सूक्ष्म उसमें प्रक्रिया होती है। ये ट्यूबलाइट में लाइट आ रही है, कैसे आ रही है? पावर हाउस से। किस माध्यम से आ रही है? किस माध्यम से आ रही है? वायर के माध्यम से आ रही है। इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है पावर हाउस से, ठीक है। तो बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस है, आध्यात्मिक शक्तियों का प्रचंड स्रोत है, उससे आत्मा में लाइट किस माध्यम से आती है? किस माध्यम से आती है? हाँ, संकल्प के माध्यम से आती है। मन मना भव का मंत्र हमें बाबा ने दिया है, मन मेरे में लगाओ। मन में जब बाबा के प्रति संकल्प चलते हैं तो बाबा से आत्मा में शक्ति आना शुरू हो जाती है। केवल मन मना भव से ही शक्ति मिलती है। जब मन में बाबा के प्रति संकल्प क्रिएट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, हम सोचने लगते हैं, तो तो कनेक्शन जुड़ते ही करंट आने लगता है। तो चार प्रकार के संकल्प हमारे मन में अभी चलते हैं वर्तमान समय। पहला है पवित्र संकल्प, अर्थात बाबा के प्रति संकल्प चलते हैं, उससे हमें शक्तियां मिलती हैं। और तीन प्रकार के संकल्प कौन से हैं? दूसरा प्रकार है व्यर्थ संकल्प चलना। व्यर्थ संकल्प कौन से समझेंगे हम? मेरे सामने टेबल पर पानी रखा है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, लेकिन थोड़ा मैं सुस्त हूं, मैं 8 संकल्प किए लेकिन पानी पीना शुरू नहीं किया। 9वां संकल्प करता हूं, फिर ग्लास लेकर पानी पीना शुरू करता हूं। इसका मतलब कितने व्यर्थ संकल्प चले? 8 व्यर्थ संकल्प चले। इतनी एनर्जी आत्मा की वेस्ट हो गई, व्यर्थ हो गई। तो व्यर्थ संकल्प से एनर्जी व्यर्थ जाती है, इसलिए बाबा का इशारा हमें मिला है व्यर्थ के लीकेज को बंद करो। किसी भी हालत में लीकेज को हमें व्यर्थ के बंद करना है। तीसरा संकल्प है नेगेटिव संकल्प, नकारात्मक संकल्प। किसी भी विकार के संबंधित या नेगेटिविटी के संबंधित कर्म चलते हैं, संकल्प चलते हैं, उससे हमारी एनर्जी बहुत नष्ट होती है, बहुत नष्ट होती है, खत्म होती है। तो नेगेटिव संकल्प को हमें पॉजिटिव में परिवर्तन करना है, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। और चौथा है कर्म करने के लिए संकल्प, जिससे हमारी एनर्जी थोड़ी 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 यूज होती है, वो जरूरी है। सारा दिन हम कितने स्वयं के लिए, कारोबार के लिए कितने कर्म करते हैं, वो संकल्प कितने क्रिएट करते हैं, उससे एनर्जी यूज होती है। तो कितने साल से योग कर रहे हैं? कितने साल से योग कर रहे हैं बोलो भाई, कितने साल हो गए योग लगाते हुए? 28 साल हो गए, फिर भी बैटरी चार्ज नहीं हुई। मुझे 40 साल हो गए, फिर भी बैटरी चार्ज ही नहीं हुई। क्यों भाई इतना लंबा समय लग रहा है? लीकेज से बहुत एनर्जी हमारी जाती है, कर्म करने के लिए यूज होती है, और निगेटिव से भी बहुत वेस्ट होती है, जमा बहुत कम रहती है। इसलिए तीन बातें हमें सारे दिन भर में चेक करने हैं। मेरा ये अर्निंग कितनी है, कमाई मेरी कितनी है, दूसरी मेरी खर्चा माना स्पेंडिंग कितनी है, और तीसरा मेरी सेविंग कितनी है, मेरा जमा का खाता कितना है। बाबा कहते संपन्न बनो फिर संपूर्ण बनो। अभी योग लगा रहा हूं लेकिन जमा ही नहीं हो रहा है, तो क्या करना होगा? बाबा ने इशारा दिया साधारण योग करने का समय पूरा हो चुका है, अभी कौन सा समय चल रहा है? ज्वालामुखी, जिससे बहुत शक्तियां बाबा से थोड़े समय में हम बहुत शक्तियां प्राप्त कर सकें, कमाई बहुत अच्छी तरह से कर सकें। तो शक्तियों से संपन्न बनेंगे और संपन्नता के बाद संपूर्ण बनेंगे। समय कम है, थोड़े समय में हमें बैटरी को फुल चार्ज करना है और केवल एक ही बार चांस मिलता है सारे क्लब में आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए संगम युग में, सारे क्लब में एक ही बार, फिर दोबारा नहीं चांस मिलता। तो व्यर्थ को हमें स्टॉप करना है पहली बात, तो उसके लिए तीन युक्तियां हैं। पानी आ रहा है म्यूनिसपालिटी से टाकी में पानी आ गया है, लेकिन बच्चे ने नल थोड़ा सा खुला करके स्कूल में चला गया और मम्मी भी बाजार में चली गई, शाम को वापस आई टाकी में पानी है नहीं, क्या हो गया, सारा लीकेज चला गया। तो सबसे पहली युक्ति वेस्ट को स्टॉप करने के लिए अपने ब्रुकटी पर फुल स्टॉप देना है और जो भी सामने आता है उसके ब्रुकटी में फुल स्टॉप देना है, बिंदु बिंदु। और हम एक बाप के बच्चे हैं, नहीं तो क्या होता है, कोई सामने आता है, ये बहन क्या नाम है इसका, ये क्या करती है, क्या इसमें गुण है क्या नहीं है, बहुत 5-7 संकल्प हमारे यूं ही चल पड़ते हैं जो जिसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन बिंदी बिंदी समझते हैं, बिंदी देखते हैं तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लगता है, आत्मा आत्मा, भाई भाई, ये बाप के बच्चे, खत्म। दूसरी युक्ति व्यर्थ को स्टॉप करने के लिए ड्रामा की बिंदी यूज करना है। कोई भी बात आती है आश्चर्य लग देने वाली तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प का बहुत तूफान चलता है, क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाबा ने ड्रामा का राज पहले ही बता दिया। ड्रामा का राज नहीं समझने वालों के ही मन में ये प्रश्न उठता है। मैंने ड्रामा का राज समझा ही नहीं अभी तक, अगर मेरे मन में प्रश्न उठता है तो। फुल स्टॉप बिंदी का लगा दो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है केवल रिपीटेशन है, केवल रिपीटेशन है। और तीसरी बात, मनन चिंतन करना हमारी हॉबी हो। मन में संकल्प तो चलते ही है, चलते ही रहेंगे, लेकिन व्यर्थ के रफ्तार को समर्थ की तरफ अगर ट्रांसफर करना है तो मन को कुछ खिलाओ, भोजन खिलाओ ज्ञान का, तो मन हमारा समर्थ सोचता रहेगा, शक्तिशाली संकल्प सोचता रहेगा, व्यर्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये तीन युक्तियां हैं जिसको प्रैक्टिकल में लाने से व्यर्थ से हम मुक्त हो सकते हैं, जो बहुत जरूरी अभी वर्तमान समय है। बाबा बार बार बाबा ने इशारा दिया है इस सीजन में, व्यर्थ को अभी विदाई दो, व्यर्थ को अभी समाप्त करो। बाबा देख रहा है ऊपर से कि मेरे बच्चे सारा दिन भर में कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, किसी भी मंदिर में आप जाएंगे ना तो मंदिर के दरवाजे पर एक चिन्ह होता है, कौन सा चिन्ह होता है बताओ, ते देवताएं होते हैं ना मंदिर में, उन्होंने दरवाजे पर एक चिन्ह होता है, ध्यान से देखा होगा तो आप बता सकते हैं, कछुए का चिन्ह होता है, कछुए का। ये जो देवताएं हैं मंदिर में, ये कैसे देवताएं बने, इन्होंने संगम युग में कछुआ वृत्ति को अपनाया था, अंतर्मुक्ता की वृत्ति को अपनाया था, अंतर ध्यान में सदा मगन रहते थे। और हम क्या करते हैं, थोड़ी बात होगी कछुआ कछुआ क्या हुआ क्या हुआ, कछुआ के बजाय कुछ हुआ। तो योगी अर्थात अंतर्मुखी, अंतर्मुखता की गुफा में सदा योगी बैठा रहता है और ध्यान में मगन रहता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, माइट हाउस बनने के लिए शक्तियां जो है ना, एनर्जी की जो लेवल है बहुत अच्छी तरह से बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे और हम संपूर्णता के समीप पहुंच जाए। बैटरी चार्ज नहीं हुई क्योंकि जितना कमाते उतना खाते, बैलेंस है ही नहीं। सारा दिन जो भी योग किया ना, जितना कमाया उतना खा लिया, खर्च भी किया। सारा दिन कितना खर्चा हमारे अपने लिए लगता है शक्तियों का। और अभी समय कौन सा है, जमा करने का समय है। कमाई कमाई करते रहो, कमाई करते रहो। कमाई जो शब्द है ना, क प्लस माई, क माई, या कमाई होगी या फिर माई होगी, माया पीछे पड़ी होगी। माया, माई माना माया, क्योंकि ये बुद्धि हमारी इधर उधर सारा दिन भटकती रहती है, भागती रहती है। लेकिन समय अभी चल रहा है, ये कमाई करने का चल रहा है, जमा करने का समय चल रहा है। जो करोड़पति लोग होंगे ना दुनिया में, वो बड़े कंजूस होते हैं। जो कंजूस होगा ना वही करोड़पति बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आपने ध्यान से देखा होगा तो मार्क किया होगा। तो अभी हमें बहुत इकोनॉमी के अवतार बनना है, अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च करना है। ठीक है, तो माइट हाउस की स्थिति बनाने के लिए ये व्यर्थ को बंद करना है, और दूसरा बाबा से बहुत अच्छी तरह से ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा शक्तियां अथाह आत्मा में भरते रहना है। ये दो बातें हैं, तो माइट हाउस की स्थिति हमारी विकसित होगी। बाबा ने आपको ये गोल्डन चांस क्यों दिया है, ऐसी पावरफुल योग की स्थिति अनुभव करने के लिए। तो ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति अनुभव करना है तो पांच बातों पर आपको दिल से अभ्यास करना होगा, तो धीरे धीरे आपकी योग की स्थिति पावरफुल बनती जाएगी, ये गारंटी है। पहली बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति बढ़ाने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अभिमानी की स्थिति बनाना जरूरी है। बहुत गहराई की, अर्थात खुद में एकदम खो जाए, और पावरफुल आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात स्वयं को मास्टर सर्व शक्तिवान समझे या मास्टर ज्ञान सूर्य समझे। ऐसी स्थिति में जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो बाबा जो पावर हाउस है उनसे बहुत शक्तियां ऑटोमेटिक आत्मा में हम खींचने लगते हैं। साधारण आत्मा समझेंगे तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज साधारण होगा तो करंट भी आपको साधारण मिलेगा। 10 घंटा योग करेंगे तो भी करंट बहुत थोड़ा सा मिल गया, तो जास्ती एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे पावरफुल भान में हमें विशेष अमृत वेले या नुमा शाम के योगाभ्यास में बैठना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरी बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए बहुत गहराई की और बहुत पावरफुल परमात्म अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति अर्थात बाबा के पास परम धाम में जाएं, बहुत समीप बाबा के बैठ जाएं और बाबा के स्वरूप को बहुत समीपता से देखें। कैसा सुंदर बाबा का स्वरूप है, कितना प्यारा स्वरूप है, और मन कैसा है, बहुत सुंदर है, बुद्धि कितनी प्योर है, कितनी सालिम बुद्धि है, और संस्कार कैसे रॉयल हैं, कैसे जेंटल संस्कार है, कैसी पर्सनालिटी बाबा की है, कैसा स्वरूप बाबा का प्यारा है, बहुत नजदीक से देखो, गहराई से। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता ही रहता है, एक टक और शीतलता को ग्रहण करता ही रहता है और मगन हो जाता है, ऐसे बाबा ज्ञान सूर्य और मैं आत्मा सूरजमुखी हूं। बस एक टक वो ज्ञान सूर्य के स्वरूप को देखते रहे। तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, न देखू तुझे तो लागे न ये जिया। एक पल भी अगर मैं आपको नहीं देखती हूँ बाबा तो मेरा जिया लगता नहीं। बस बहुत समीपता से गहराई से बाबा के स्वरूप को निहारते रहे और आनंद लेते रहे। योग अभ्यास करने के दो मतलब हैं, दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है भगवान की कंपनी को बहुत एंजॉय करना, उनके संग का भरपूर आनंद लेना, उनके प्यार को अच्छी तरह से अनुभव करना, प्रभु प्रेम से स्वयं को भरपूर करना। और दूसरा उद्देश्य है उस ज्ञान सूर्य बाबा शक्तियों का जो सागर है उनसे अथाह शक्तियां प्राप्त करके आत्मा को शक्तियों से भरपूर करना, ये दूसरा उद्देश्य है। कहते प्यार के सागर के बच्चों को प्यार की प्यास नहीं हो सकती, प्यार के सागर के बच्चों को प्यार की प्यास नहीं हो सकती। कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे रिगार्ड दे, कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत मिल रहा है मेरे बाप से, उस सागर से मैंने बहुत प्राप्त किया है, मुझे प्यासी नहीं है, सागर ही मेरा बाप है। और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति अर्थात जैसे अर्जुन ने भावना में आकर वर्णन किया कि भगवान का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में है, ऐसा तो नहीं है लेकिन भावना में आके अर्जुन ने कहा, लेकिन उसका मतलब है कि बाबा का जो बहुत शक्तिशाली प्रखर ज्ञान सूर्य के रूप में हमें बहुत अच्छी तरह से स्वरूप अनुभव करना है। बाबा अथाह शक्तियों के सागर है, प्रचंड शक्तियों के स्रोत है, ऐसे पावरफुल बाबा का स्वरूप को हम देखें और अनुभव करें तो ऑटोमेटिक ज्वाला स्वरूप की अनुभूति सहज हमें होने लगती है। तीसरी बात, ज्वाला स्वरूप की अनुभूति बढ़ाने के लिए हमें अनुभव करना है कि हमारा मन और बुद्धि जो है ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो। किसी से भी अगर हम मिलते हैं हमारे दिल में खुशी ही नहीं होती है तो वो मिलन में मजा नहीं आता है, रुखा सुखा मिलन होता है। लेकिन जब हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर है तो परमात्म मिलन का जो मजा है, अनुभव है, वो बहुत ही गजब का होता है, बहुत ही निराला होता है। उसमें आप खो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं। किसके साथ मिल रहे हैं हम? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती उससे मिल रहे हैं। और वो दे क्या रहा है हमें? वो किससे बहुत बड़ी प्राप्ति होने वाली होती है ना, तो मिलने के लिए बहुत हम खुश होते हैं, इससे मुझे 10 लाख मिलने वाला है आज। अरे बाबा क्या दे रहा है? दुनिया में आज तक हमें किसी ने भी नहीं दिया है, उससे अनाप शनाप खजाने देने वाला ये मेरा बाप है। माला माल सारे क्लब के लिए करने वाला ये मेरा बाप है। इक्कीस जन्मों की बात चाहिए तो छोटी सी बात है, लेकिन सारे क्लब में माला माल कराने वाला मेरा बाप है, उससे मैं मिल रहा हूं, उससे मैं मिलन मना रहा हूं, तो कितना मन बुद्धि हमारी खुशी से भरपूर हो, उछलते रहे बाबा से मिलन मनाने के लिए। तो फिर आप देखेंगे मिलन का मजा ही कुछ और होगा। बहुत गहन स्थिति की अनुभूति आपको स्वतः ही होगी। प्रकाशमणि दादी जी बाबा से मिलती थी स्टेज पर, बाबा दादी को देख रहा है और दादी बाबा को देख रही है, क्या आंखों आंखों में बातें चल रही है वो तो दोनों ही जाने। कितना प्यार, कितने प्यार से मिल रहे हैं, देख रहे हैं, ये मिलन है, अनोखा मिलन। तो ऐसे हम परम धाम में बाबा के सामने जब बैठते हैं तो मन बुद्धि हमारी ऐसी खुशी में झूमती रहे। कितनी प्राप्तियां हमें हो रही है और होने वाली है, जिसका हिसाब नहीं, बेहिसाब। चौथी बात, ज्वाला स्वरूप की अनुभूति करने के लिए हमारे दिल में केवल परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता ही रहे, बस बहता ही रहे। हमारे दिल में केवल परमात्म प्यार का झरना बहता ही रहे, निरंतर बहता रहे। उससे क्या होगा? हम प्यार के सागर में डूब जाते हैं, प्यार के सागर में समा जाते हैं और एकदम शिवमय बन जाते हैं और बाबा से कंबाइन हो जाते हैं और लीन हो जाते हैं प्रभु प्रेम में। तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं और दूसरे तरफ शक्तियों के सागर हैं, तो वो प्रेम स्वरूप याद ऑटोमेटिक शक्तिशाली पावरफुल याद में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होती है। प्रेम स्वरूप याद ऑटोमेटिक शक्तिशाली स्वरूप याद में कन्वर्ट हो जाती है। अग्नि से हाथ लगता है तो अग्नि की गर्मी लगती है। तो ऐसे बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं, दूसरी तरफ ज्ञान सूर्य हैं, अथाह शक्तिशाली हैं, तो शक्तियों का करंट हमें ऐसा पावरफुल बाबा से स्वतः ही मिलता है। हमें भगवान से ही प्यार करना है, किसी भी व्यक्ति से वैभव से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई बताओ, कुमारिया बताओ, क्यों भगवान से बात करना है, क्यों व्यक्ति वैभव से नहीं करना है? हाँ, प्यार परिवर्तनशील है। पांच बातें हैं, लिखो। क्यों मुझे भगवान से प्यार करना है, पांच बातें लिखो। पहले तो भगवान को भगवान क्यों कहते भाई, दूसरा नाम क्यों नहीं पढ़ा, क्यों कहते उनको भगवान, दूसरा नाम कोई नहीं है, भगवान ही नाम पढ़ा है उनको। भाग्यवान बनाता है हमें, कहते ये धनवान है, ये रूपवान है, ये आशावान है, ये हिम्मतवान है, ये गुणवान है, और ये भगवान है। सबको भगा कर ले जाने में नंबर वन उस्ताद है। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, किसी से याद नहीं करा, मेरे पास लटके रहो, याद की फांसी में सदा उल्टे लटके रहो। सबको 16,000 कोई नहीं ले भगा के ले गया, सबको भगा कर ले जाता है। मेरे पास आके बैठ जाओ, इतनी पालना देता है प्यार की, सबकी बुद्धि को यहां से भगा कर ले जाता है, वहां लटका के रखता है। भगा कर तो ले जाता है, लेकिन सब कुछ दे भी देता है। ये सारे खजाने तुम्हारे, मैं क्या करूं इन खजानों को, लूटो और लुटाओ। इसलिए उसको भगवान कहते हैं, उस्ताद है भगा कर ले जाने में सबको। पहली बात, बाबा से ही हमें प्यार क्यों करना है। पहली बात है, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में हमने द्वापर युग से बहुत धोखे खाए हैं और बहुत कड़वे अनुभव किए हैं। केवल परमात्म प्यार ही रिलायबल लव है, विश्वास पात्र प्यार है, ट्रस्टफुल लव है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है, सदाकाल का प्यार है। आत्माओं का प्यार विनाशी प्यार है। ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है, जहां स्वार्थ समाप्त होता है कोई किसी को पूछता भी नहीं। लेकिन केवल भगवान ही ऐसा है जो निस्वार्थ प्यार देता है, इसलिए उनको पालन हार कहते हैं। ऐसी पालना देते हैं, ऐसी पालना देते हैं, हार पहनाने के लायक पूजनीय बनाते हैं। केवल परमात्म प्यार ही कैसा है, अविनाशी प्यार है, सदाकाल चलने वाला प्यार है। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही आत्मा को प्योर बनाता है। आत्माओं का प्यार हमें इम्प्योर बनाता है, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल और अनकॉम्प्लिकेटेड है। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आत्माओं के प्यार में कितने कंडीशंस और कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम देखते हैं आए दिन कितने डाइवर्स होते हैं। कोर्ट कचेरिया में जाके देखो कितने कंडीशंस। लेकिन केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल और अनकॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी भोली भोली माताएं भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, कोई कंडीशन है ही नहीं। पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें इस दुनिया से पार ले जाता है, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है। जो टॉप क्वालिटी की आत्माएं होती है वो टॉप पर रहती है, टॉप फ्लोर पर रहती है, परम धाम होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान में रहती है। तो परमात्म प्यार हमें दुनिया से पार ले जाता है। तो इसलिए मुझे केवल भगवान से ही प्यार करना है, किसी भी आत्मा के साथ प्यार को शेयर नहीं करना है। सबके साथ समान स्नेह होना ये गुण है, लेकिन विशेष किसी के साथ स्नेह होना ये अवगुण है, ये मोह है। सबके साथ प्रेम के सागर के बच्चे हैं, सबके पास समान स्नेह होना ये गुण है, दिव्य गुण है। प्यार के सागर के बच्चे, हमारा व्यवहार रुखा सुखा नहीं होता है, लेकिन हमें कहां जाना है माताएं, किसके दुनिया में जाना है, मोह न की दुनिया में जाना है, मोहन की दुनिया में जाना है ना। तो मोह न नष्ट करना है उसको, ठीक है। पांचवी बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए हम जब योग में बैठते हैं तो पूरी दृढ़ता हमारे योग की बैठक में हो और पूरी एकाग्रता योग की प्रक्रिया में हो, पूरी दृढ़ता। जैसे ही हम बाबा की याद में बैठते अमृत वेले, दृढ़ता पूर्वक बैठे, आज मुझे कैसी भी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करना ही है, इसी दृढ़ता से बैठेंगे तो आपको वो अनुभूति होगी, क्योंकि दृढ़ता की परछाई है सफलता। साधारण रीति से बैठेंगे तो साधारण अनुभव होगा, लेकिन दृढ़ता के साथ बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव योगाभ्यास में होगा। दृढ़ता के साथ एकाग्रता, ये ज्वाला स्वरूप योग का सीक्रेट एक ही बात में है, एकाग्रता। बस इसके लिए उदाहरण देते हैं, कागज का टुकड़ा सूर्य की रोशनी में हमें जलाना है तो सूर्य की रोशनी कितनी भी प्रखर होने के बाद उसको डायरेक्ट जला नहीं सकती है। उसके लिए क्या करना होता है, मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ना पड़ता है। सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, उससे जब पास होती है तो बहुत शक्तिशाली होती हैं, और वो शक्तिशाली किरणें एक बिंदु पर एकाग्र होती हैं तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और सेकंड में अग्नि प्रज्वलित होती है और पेपर जल जाता है, और लेंस अगर थोड़ा भी हिल भी जाता है तो अभी पेपर नहीं जलता है। तो ऐसी बुद्धि से ज्ञान सूर्य बाबा को देखते हैं तो ज्ञान सूर्य की किरणें बुद्धि रूपी लेंस से जब पास होती हैं तो वो बहुत शक्तिशाली होती है, लेजर बीम की तरह किरणें होती हैं, और वो किरणें जब आत्मा पर एकाग्र होती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, योग की ज्वाला धधकने लगती है, और उस प्रखर योग की ज्वाला में हमारे कठोर संस्कार भस्म हो जाते हैं। जो कई सालों तक नहीं होते हैं वो सेकंड में खत्म होते हैं। तो ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए पूरी एकाग्रता योग की प्रक्रिया में सदा हो। हमने बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता से अभ्यास किया है, उसका बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्रों में है, कौन सा है, हा? अर्जुन का कौन सा है, किसको मारा है, बहुत सुंदर उदाहरण है। गुरु द्रोणाचार्य नहीं गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। एक दिन उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए, आर्टिफिशियल पंछी को एक वृक्ष की टाल पर टांगा और उन्होंने लक्ष्य दिया कि इस पंछी की आंख में जो पुतली है, आई बॉल जो काला है, उस पर तीर मारना है। आंख में जो आई बॉल है पुतली, उसको तीर मारना। फिर अर्जुन को बुलाया, फिर क्या दिखाई देता है, मुझे कहता है कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल वो पुतली ही नजर आ रही है, पंछी भी नहीं, उसकी आंख भी नहीं, वो टाल भी नहीं, केवल वो पुतली। तो ऐसे हमारा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा जो सुप्रीम स्टार है, हम हैं सुपर स्टार और बाबा हैं सुप्रीम स्टार, बस उस स्टार पर बाबा पर पूर्णतया एकाग्र हो। तो ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति अमृत वेले या नुमा शाम के समय हमें करना ही है। ये समय की पुकार है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। अगर हम स्वयं को शक्तियों के खजाने से भरपूर करना चाहते हैं, माइट हाउस की स्थिति बनाना चाहते हैं, तो ऐसी पावरफुल स्थिति बनाना बहुत जरूरी है। समझा? तो एकाग्रता परम धाम रूपी पीस पैलेस में मैं और बाबा बस और बैठे हैं और योग में एकदम खोए हुए हैं। कहते हैं खो जाना तो मिलेगा खजाना, खो जाना नहीं तो खजाना नहीं। खुद में और खुदा में खो जाओ, बस डूब जाओ, लीन हो जाओ। समझा? और उसके साथ माइट हाउस की स्थिति बनाने के लिए हम जितना हो सके मनसा सेवा को बढ़ाते चलें, तो जितना जितना हम शक्तियों का दान देते जाएंगे उतना दुआओं का स्टॉक जमा होता जाएगा। वो दुआओं का स्टॉक भी हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए सपोर्ट करता है। इसलिए बाबा का इशारा है, जब भी समय हमें मिलता है मनसा सेवा बीच बीच में हमें करते रहना है। दान देते रहने से क्या होता है, दुआएं मिलती हैं और वो हमारे स्थिति में बहुत आगे बढ़ाने में मदद करती है। समझा? तो अभी ऐसी पावरफुल स्थिति बनाने का समय चल रहा है, क्योंकि हम कितने सालों से ज्ञान में चलते हैं और योग भी करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन हमें कमेंट मिलता है अड़ोसी पड़ोसियों से, वहां जाते हो योग करते हो अभी भी गुस्सा करते हो, अभी भी चिड़चिड़ापन है, अभी भी फीलिंग आती है। तो ये कमेंट मिलता है तो बाबा का नाम बदनाम होता है। ये क्यों मिलता है, क्योंकि पुराने संस्कार हमारे नरम भी हो जाते हैं, गर्म भी हो जाते हैं, लेकिन पिघलते नहीं है, मेल्ट नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। समझा? और उसके लिए जैसे ज्वाला योग की धधकती है, तो उस ज्वाला में कितने भी कठोर संस्कार है वो मेल्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्वालामुखी योग इसका नाम है। जैसे ज्वालामुखी धरती से जो फटती है, लावा रस निकलता है, ये देखो माउंट आबू जो है ना, ये नकीलेक ये ज्वालामुखी का इरप्शन करने का स्थान है। यहाँ से द्वापर के शुरू में त्रेता के अंत में बहुत बड़ी ज्वालामुखी फट गई और जैसे वो लावा रस इतना प्रखर निकला, जब लावा रस ठंडा हो गया तो ऐसे पत्थर के पहाड़ बन गए। इतने बड़े बड़े पहाड़ ये त्रेता के अंत में जो द्वापर के शुरू में बने हुए हैं। हमारे सोने के महल सारे गायब हो गए सतयुग त्रेता के, ये अर्थक्वेक से चले गए, समझा। तो अभी हम थोड़े समय के लिए ऐसी पावरफुल स्थिति की अनुभूति करेंगे, करना चाहेंगे ना कि नहीं? हाँ भाई बोलो, करना चाहेंगे ना सभी? तो थोड़ा सा अभी एक बार खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट बॉडी को चार्ज करेंगे, चुस्ती को भगा देंगे, सुस्ती को। थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करो, खुद को शाबाशी दो थोड़ा। थोड़ी माया से बॉक्सिंग करो जरा। अभी हम आधा घंटा बहुत अच्छी तरह से आत्मा का अभ्यास करेंगे और लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति का अनुभव करेंगे 7 बजे तक। उसके बाद फिर पावरफुल योग का अभ्यास करेंगे, ठीक है? तो सभी चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे और म्यूजिक चल रहा है। ओम शांति। इस शरीर रूपी मकान में मैं आत्मा रूपी लाइट विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी लाइट से दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा रूपी लाइट दिव्य प्रकाश पुंज की कायाधारी हूँ। मेरे हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश के किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा लाइट हाउस की सुंदर स्थिति अनुभव कर रही हूँ। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूँ। पवित्रता का प्रकाश पवित्रता की लाइट चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा ने पवित्रता का सुंदर ताज भी धारण किया है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूँ। जो स्वयं के सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को दिव्य स्वरूप को निराकारी स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूँ। और अनुभव भी कर रही हूँ। यह पांच तत्वों से बना हुआ शरीर इन पांच तत्वों में समा रहा है। समा रहा है। समा गया है। मैं केवल एक चमकता हुआ जगमगता हुआ ज्योति बिंदु सितारा हूं। जैसे मेरे पिता निराकार हैं, वैसे मैं आत्मा भी निराकार हूं। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा लाइट हाउस और माइट हाउस के सोमान के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मुझ लाइट हाउस और माइट हाउस आत्मा से चारों ओर लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा राजा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे यह सोमान का सिंहासन दिया है। स्वयं भगवान ने मुझे नई दुनिया की स्थापना के महान कार्य के लिए अपनाया हुआ है। मैं खुदाई किस्मतगार आत्मा हूँ। सारे संसार के भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। वारे में वहां मेरा पाठ वहां मेरा भाग्य कितनी सुंदर और अनोखी स्थिति है यह लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति। दिव्यता की किरणें और शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा से चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ। कितनी सुंदर है यह प्यारी फरिश्तों की दुनिया। प्यारा सूक्ष्म वतन चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस यह फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे डियरेस्ट डैड प्यारे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ आत्मा की ओर आ रही हैं। मैं आत्मा स्नेह के लहरों में सागर के लहरों में लहरा रही हूँ। बाबा के नजर से मैं आत्मा निहाल हो रही हूँ। बाप दादा मुझे बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से अथाह शक्तियां ग्रहण कर रहा हूँ। किलधे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। मीठे बच्चे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव का जो गायन है वो निभाने में आया हूँ। जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यास भरपूर करो। शांति।
बता पोतानी जे स्थिति में छो एमांथी नीचे नथी आवानू, पण जे लाइन में बैठा छो आमने सामने एक बीजानी साम सामे मोड़ो करी दो। माताओ पण आबे, कुर्सी वाला पण, सोफा वाला पण, भाईओ भाईओ तरफ, माताओ माता तरफ, पोतानी बाजू में जे लाइन छे साम सामे आत्मिक स्थिति नो पाठ पक्को कर्यो छे। दरेक ने आत्मा रूपे फरिश्ता स्वरूपे निहाळवाना छे, अने आगळनी पण जे कॉमेंट्री मळे ए कॉमेंट्री ने अनुसरवानुं छे। बिल्कुल ऊपरनी स्थितिमां हल्कापणुं आत्मा कहती क्लास में सांभळ्युं एम आत्मा ने जुओ, बिंदु ने जुओ अने बिंदु लगावो। भले एकबीजा ने ओळखता हशो विशेषताओ थी, कमियों थी, कोई पण वातो थी, बधी ज वातो ने स्टॉप करी मात्र बिंदु चमकतो सितारो पॉइंट ऑफ लाइट। नेत्र खुला रहेशे, અહીંયા જ આત્મા રૂપે જોવાનો અભ્યાસ ખૂબ સારી રીતે કરી શકશો। એ અભ્યાસ આપણને આગળ માટે ખૂબ કામ લાગશે। એટલે આત્મા પોઈન્ટ ઓફ લાઇટ, બીજું કાંઈ નહીં, માત્ર લાઇટ। પાવરફુલ લાઇટ કે જેમાં દેહ નથી દેખાતો, મોટર કારની પાવરફુલ લાઇટ સામેથી આવે છે તો મોટર કાર નથી દેખાતી, માત્ર લાઇટ જ દેખાય છે, શરીરરૂપી મોટર ન દેખાય, માત્ર ને માત્ર લાઇટ।
बाबा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ। जा रही हूँ। कितनी न्यारी और निराली है यह निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल हिलाल दिव्य प्रकाश से प्रकाश है। शांति ही शांति है। कितनी स्वीट साइलेंस है यहाँ। डीप साइलेंस है यहाँ। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन। मेरा स्वीट होम। मेरे प्राणों के प्राण। मेरे प्राण आधार। सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबा। मेरे समक्ष विराजमान है मैं आत्मा बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूँ। उनकी सुंदरता को देख रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे नैनों में समा चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में बस मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा मेरे संसार बन चुके हैं। मेरे दिल और दिमाग पर बाबा ही बाबा छाए हुए हैं। बाबा बाबा मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी, और ये रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपने दिल तख्त पर अपने शीतल गोद में बिठा दिया बाबा। अलौकिक माँ बनकर ज्ञान की लोरी भी दे रहे बाबा, जिससे मेरे जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। जो उपकार आपने मुझ पर किया बाबा, मैं भूल नहीं सकती बाबा, नहीं भूल सकती। ये मेरे सलोने शिव साजन, आप मुझ आत्मा रूपी सजनी को दिव्य गुणों के आभूषणों से सजा रहे हो। मैं सजनी अपने शिव साजन को एक टक देख रही हूँ। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र ईश्वरीय नशे से चूर है। मेरे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूँ, जा रही हूँ, और उनके लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूँ। खुदा पर फिदा हो चुकी हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं प्यार के सागर में समा गई हूँ। शिव मैं बन चुकी हूँ। कंबाइंड हो चुकी हूँ। प्यार के सागर में लीन हो चुकी हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मैं प्यार के सागर के तले में समा चुकी हूँ। खुदा में खो चुकी हूँ। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। ज्ञान सूर्य से शक्तियों की प्रखर किरणें, तेजस्वी किरणें, शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा अथाह शक्तियां ज्ञान सूर्य से ग्रहण कर रही हूँ। योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य से अथाह लाइट और माइट निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझ आत्मा के द्वारा विश्व की ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर लाइट और माइट के किरणों की वर्षा हो रही है। अनेक आत्माएं मुझ आत्मा द्वारा ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट प्राप्त कर रही हैं और रिटर्न में मुझे दुआएं भी दे रही हैं। कितनी सुंदर है यह विश्व कल्याणकारी स्थिति की अनुभूति। मेरे जीवन के सुनहरे पल हैं यह, जो मैं स्वयं भगवान के सान्निध्य में अनुभव कर रही हूँ। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा खोई रहूं, समाई रहूं। ज्ञान सूर्य से निरंतर लाइट और माइट की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। पूरी एकाग्रता के साथ मैं बाबा के शक्तिशाली स्वरूप को दिव्य नेत्र से देख रही हूँ और स्वयं में अथाह शक्तियाँ ग्रहण कर रही हूँ। मैंने बाबा को मेरे दिल रूपी मंदिर में बसा लिया है।